हमारे पास फटे पुराने कपड़े होते हैं और घर का कोई ठिकाना नहीं होता है, फिर भी हम उसमें इतने आसक्त रहते हैं। ये राजा थे, राज रजवाड़े में रहते थे, लाखों लाख दासियां, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले सब कुछ था, सबके बीच में रहकर भी उससे आसक्त नहीं थे। गीता में भगवान कहते हैं पद्म पत्र इवाम बसा, जैसे कमल, कमल कीचड़ में उगता है, दलदल में उगता है, परंतु उस कीचड़ से थोड़ा भी प्रभावित नहीं होता है। कीचड़ यद्यपि बहुत बेकार वस्तु है, परंतु कीचड़ में उगने वाला कमल भी बहुत सुंदर और सुगंधित होता है, कीचड़ में उगने के बाद भी उसे प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार महाराज अम्बरीश, बिठाओ इसे, उसी प्रकार महाराज अम्बरीश ये सब के बीच में रहकर भी उसे आसक्त नहीं थे। तो नाभाग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के नीतिमय जीवन, पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण उनके पुत्र के रूप में महाराज अम्बरीश प्रकट हुए, जो भगवान के महान भक्त थे। वास्तव में ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा पुत्र भक्त बन जाए, नहीं तो आपके पास कितना भी धन हो, गाड़ी बंगले संपत्ति हो, यदि पुत्र अच्छे नहीं है तो मानो हमने जीवन में कुछ अच्छे काम, पुण्य के काम किए हैं, परंतु वह पुत्र हमारी संपत्ति को ऐसी गलत जगह पर रखेंगे जिससे हमको भी नरक में भेज देंगे। इसलिए पुत्र अच्छे मिलने, भक्त प्राप्त होने बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त थे, और पुराणों में बहुत सुंदर कथा है, कहते हैं अम्बरीश महाराज की 1000 पत्नी थी, कम नहीं, 1000। एक समय की बात, एक स्त्री ने अम्बरीश महाराज को पत्र लिखा, और पत्र में लिखा था कि राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। अम्बरीश महाराज ने उस पत्र का जवाब दिया कि पहले से हमारी 1000 पत्नियां हैं और मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, मुझे विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं विवाह करना नहीं चाहता हूं। अम्बरीश महाराज ने मन में सोचा कि मैं राजा हूं और राजा के साथ कौन विवाह करना नहीं चाहता। जब उस स्त्री को यह पत्र मिला, स्त्री ने सोचा कि राजा ऐसा समझते हैं कि मैं उसके धन से प्रेम करती हूं। तब वह स्त्री ने दूसरा पत्र लिखा कि राजन, मैं आपके धन से प्रेम नहीं करती हूं, आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हो और मुझे भक्त पति चाहिए, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। जब अम्बरीश महाराज को यह पत्र मिला, तब अम्बरीश महाराज ने सोचा कि यदि मेरे कारण संसार के किसी जीव का उद्धार होता है तो ठीक है, एक विवाह और कर लेते हैं। अम्बरीश महाराज ने अपनी तलवार भेजी और विवाह किया, और विवाह करके वह पत्नी घर पर आई। घर पर आके दूसरे ही दिन से अम्बरीश महाराज रोज सुबह 4 बजे जगते थे, और 4 बजे जगकर भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाना, उनकी आरती करना, पूजा करना, भोग लगाना, ये सब कार्य अम्बरीश महाराज अपने हाथों से करते थे। परंतु ये नई भक्त पत्नी आई और उन्होंने देखा कि मेरे पतिदेव 4 बजे जगकर भगवान की सेवा करते हैं, तो ये 3 बजे जगने लगी, और 3 बजे जगकर अपने पति की सारी भगवान की जो सेवा थी वह करने लगी। और जब अम्बरीश महाराज जगकर वहां मंदिर में आए, तब तक तो सब कुछ भगवान की सेवा हो चुकी होती थी। इस प्रकार से 1 दिन 2 दिन 1 महीना बीता, और अम्बरीश महाराज ने सोचा अब तो मेरी सेवा छूट रही है। तब अम्बरीश महाराज ने एक मिस्त्री को बुलाकर उस नई पत्नी के घर पर बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, और अपने जैसे ही भगवान श्री राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की और अपनी इस नई पत्नी को कहा, अब एक काम करो, आप इस मंदिर की सेवा करना, इस मंदिर को मार्जन करना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तब दूसरे दिन से यह नई पत्नी अपने घर में मंदिर की सेवा करने लगी, महाराज अम्बरीश अपने मंदिर की सेवा करने लगे। परंतु महाराज अम्बरीश अपने मंदिर में साफ करके, भगवान को वस्त्र पहनाकर, आरती पूजा करके, भोग लगाकर अब सोचने लगे कि ये नई पत्नी आई है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कैसे वस्त्र पहनाए होंगे। भगवान के भक्त को यह जिज्ञासा होती है। तो भगवान का दर्शन करने के लिए महाराज अम्बरीश अपनी नई पत्नी के घर पर गए और दर्शन किए। इस प्रकार एक दिन, दो दिन, अब तो अम्बरीश महाराज का नित्य क्रम हो गया कि रोज नई पत्नी के घर पे जाकर वहां भगवान का दर्शन करना। जब महाराज अम्बरीश रोज नई पत्नी के घर पर जाने लगे, तब ये बाकी हजार पत्नियों ने सोचा कि ये महाराज हमारे पतिदेव 3 साल में एक बार हमारे घर पर आते हैं, 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो एक एक दिन भी ले लीजिए तो 3 साल में एक बार एक पत्नी के घर पर जा सकते हैं। 3 साल में एक बार ये हमारे घर पर आते हैं और ये जो नहीं आई है उसके घर पर रोज जा रहे हैं, ऐसा तो उसके पास क्या है जिसके कारण राजा अम्बरीश रोज उसके घर पर जा रहे हैं। तब ये सभी पत्नियों ने देखा कि ये जो नई आई है उसके घर पर मंदिर है, ठाकुर जी के विग्रह है, उनकी सेवा करती है और उनका दर्शन करने के लिए राजा जाते हैं। तब ये हजारों पत्नी ने मिस्त्री को बुलाया और 1000 मंदिर बनाने का ऑर्डर दिया। सभी पत्नियों ने अपने अपने घर पर मंदिर बनाए, ठाकुर जी का विग्रह की स्थापना की और सभी पत्नी उनकी सेवा करने लगी, भोग लगाने लगी। तब अम्बरीश महाराज ने सोचा कि अब तो हमारे यहाँ 1000 विग्रह है, अब तो अम्बरीश महाराज सभी पत्नियों के घर पर, एक दिन में सभी पत्नियों के घर पर जाकर दर्शन करके आए। प्रश्न हो सकता है कि एक व्यक्ति 1000 मंदिर में कैसे जा सकता है, परंतु भक्तों ये जो राजा होते हैं उसमें भगवान की विशेष शक्ति निहित होती है। आगे आपने सुना, हरेर अंशांश जन्मन, भगवान की भुवन पालिनी नामक शक्ति ही राजा में होती है, वे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो प्रतिदिन अब सभी पत्नियों के घर पर जाने लगे। अब राजा पत्नियों के घर पर जा जाकर दर्शन करने लगे तो उसका प्रजा के प्रति ध्यान कम हो गया। तो राजा की प्रजा सोच में पड़ गई कि अब तो राजा हमारे बीच में आते ही नहीं है, उनके घर पे, उनके महलों में क्या हो रहा है। तो प्रजाओं ने देखा कि उनकी पत्नियों ने हजारों मंदिर बनाकर अपने घर पर रखे हैं, इसलिए राजा वहां पर जाते हैं। तो सभी, पूरी प्रजा ने अपने अपने घर पर बहुत सुंदर मंदिर बनाए, ठाकुर जी का विग्रह की स्थापना की। और राजा को पता चलने पर राजा अब पूरी प्रजा के घर पर जा जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन करने लगे। राजा के राज्य में रहने वाले सब लोग भक्त हो गए। अब राजा अपने राज्य में रहने वाले सभी लोगों के घर पर जा जाकर दर्शन करते तो बाजू वाले देश के प्रति राजाओं का ध्यान कम हो गया। बाजू के कंट्री के साथ जो व्यवहार करना था वो सब बंद हो गया। तब बाजू के देश वालों ने सोचा कि राजा अब हमारे साथ व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। पता चला कि राजा के देश में सब लोग मंदिर बनाकर रखे हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो बाजू के देश वालों ने सब ने अपने अपने घर पर मंदिर बनाए, ठाकुर जी के विग्रह की स्थापना की और उनकी आरती सेवा भोजन भोग धराने लगे। अब तो राजा अपने देश में भी सबके घर पर जाते, बाजू वाले देश में भी। तब और बाजू वाले देशों ने सोचा कि राजा उनके घर पर जाते हमारे घर पर नहीं आते हैं, हम भी मंदिर बनाएंगे। ऐसा करते करते एक दिन का समय था, यह पूरे विश्व भर में, ये पूरी दुनिया में सब लोग के घर पे मंदिर, ठाकुर जी राधा कृष्ण के विग्रह और सब लोग राधा कृष्ण की भक्ति करते। अब मैं आपको एक प्रश्न यदि पूछूं कि एक दिन यह सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, इसका कारण क्या है, इसका कारण कौन बना? सारी दुनिया को भक्ति कराने के पीछे एक स्त्री का कारण, एक स्त्री के कारण सारी दुनिया भक्ति में लग गई। कौन कहता है स्त्रियों में शक्ति नहीं है? स्त्री यदि चाहे तो पूरे जगत नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को भक्त बना सकती है। स्त्री यदि चाहे, और स्त्री यदि चाहे तो पूरे कुल को नष्ट कर सकती है। स्त्री के हाथ में बहुत बड़ा भार सौंपा गया है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर पुराणों में यह कथा पाई जाती है। राजा अम्बरीश भी भक्त थे, उनकी पत्नियां, उनके देश में रहने वाले सब लोग उन भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। राजा अम्बरीश भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ व्रत करने होते हैं, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक ही व्रत है, वो है एकादशी व्रत। इस संसार में कुछ लोग बहुत व्रत रहते हैं, सोमवार मंगलवार इत्यादि अलग अलग, परंतु यह सब व्रत अपने मनमाने ढंग से रहते हैं। यह व्रत इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान प्रसन्न हो। हम लोग हमारे जीवन में व्रत इसलिए रखते हैं ताकि भगवान की प्राप्ति हो, भगवान प्रसन्न हो। परंतु भगवान कैसे प्रसन्न होंगे ये हमारे मन गलत ढंग से नहीं जान पाएंगे। भगवान जो कहते हैं वह करेंगे तब जाकर भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान ने शास्त्र में कहा है कि यदि मुझे प्रसन्न करना है मेरी भक्ति करो, और भक्ति करते करते एकादशी व्रत का पालन करो। एक महीने में दो एकादशी और एक साल में 24 एकादशी, और यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत का पालन करते थे और एकादशी व्रत के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबको निर्जला रहना चाहिए, बिना खाए बिना पिए। परंतु जो निर्जला नहीं रह सकते हैं उसे सजला करना चाहिए, केवल पानी पीकर पूरा दिन। परंतु जो सजला भी नहीं रह सकते उसे सफला, केवल फल खाकर दिन बिताना चाहिए। और जो सफला भी नहीं रह सकते हैं अब उसे तो एक ही बात कहनी चाहिए कि आप अन्न मत खाओ, फराल खा सकते हो, अन्न नहीं खाना है। और आज तो लोग एकादशी करते हैं और हम तो देखते हैं बाकी के दिन इतना नहीं खाते हैं उतना एकादशी के दिन खा लेते हैं। बाकी के दिन में तो रोटी सब्जी दाल भात खाते हैं, परंतु एकादशी के दिन सब्जी होती है, साबूदाना की खिचड़ी होती है, रवा की खिचड़ी होती है, दूधी का हलवा होता है, गाजर का हलवा होता है, बहुत सारी चीज खा सकते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब जैसा देश वैसा वेश तो पहनना होगा। अच्छा लग रहा है ना कि निकाल दूं? हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
कैमरे में आ रहा है तो अब तक इतना था, अभी कट जाएगा। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। प्रश्न होता है एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या होता है अन्न में? एकादशी के दिन अन्न में असुर का वास होता है, आसुरी शक्ति होती है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न से वर्जित रहना चाहिए। महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत का पालन किए और निर्जला बिना भोजन किए बिना पानी पिए एकादशी व्रत का पालन, परंतु जितनी महिमा एकादशी व्रत की है उतनी ही महिमा एकादशी के दूसरे दिन पारण करने की भी है। संसार में प्राय लोग एकादशी रहते हैं परंतु पारण ठीक से नहीं करते हैं। एकादशी छोड़ने का कुछ समय होता है, पारण करने का समय होता है। एकादशी कब से शुरू होती है? मान लो आज एकादशी है तो कल रात को 12 बजे से एकादशी शुरू हो गई, 12 बजे से उपवास करना है। आज सुबह, आज का पूरा दिन, और कुछ लोग रात को 12 बजे तक रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं, कल के दूसरे दिन कल समय निर्धारित किया गया होता है, 6 बजे से 8 बजे के बीच में या 5 से 7 बजे के बीच में। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन में ये पूरे साल का समय आपको दिया जाएगा यदि किसी को चाहिए। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु, शांतिलाल प्रभु, वास्तव में यहाँ पर रहने वाले भक्तों की के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होने जा रही है कि यहाँ पर हमारे मुंबई में रहने वाले और आप ही के गांव के शांतिलाल प्रभु, जिसका दीक्षित नाम श्रीनाथ जी प्रभु है, भगवान की प्रेरणा से अब वे मुंबई छोड़कर यहाँ पर आप सबको भक्ति देने के लिए आने वाले हैं। तो मैं आपके सबके चरणों में निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी जो भी उपदेश दे, जो भी शिक्षा दे, उसे पालन कीजिएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर 1-2 घंटे में कितना बोल सकते हैं, परंतु ये यहाँ पर रहेंगे और आप लोग उसकी शिक्षा का पालन कीजिए। और उनसे जान लेना चाहिए कि एकादशी कौन से समय में छोड़नी है, और उस समय में यदि एकादशी छोड़ते हैं, पारण करते हैं, तब एकादशी के करने का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, नहीं तो एकादशी करने का पूरा पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत रहे, द्वादशी के दिन जब पारण करने जा रहे थे उसी समय दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर पधारे, और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे भोजन करना है, मेरे लिए भोजन बनाओ, मैं अभी स्नान करने जा रहा हूं, स्नान करके आकर मैं भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए और यहां पर अम्बरीश महाराज के पारण का समय निकला जा रहा था। अम्बरीश महाराज पारण करने की महिमा जानते थे, अब वे तो असमंजस में फंस गए कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, यदि उन्हें भोजन कराकर, बिना भोजन कराकर मैं भोजन कर लूंगा तो मुझे श्राप दे देंगे, और यदि भोजन नहीं करता हूं तो एकादशी करने का फल प्राप्त नहीं होगा। असमंजस में फंस गए, धर्म संकट में फंस गए। तब अन्य ऋषि मुनियों को पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने कहा, एक काम करो, तुम जल पी लो, जल पीने से आपका दोनों प्रण रह जाएगा। अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया और वहां दुर्वासा ऋषि को पता चला कि मुझे भोजन दिए बिना अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया है। क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर अम्बरीश महाराज ने अपने सिर से एक जटा निकाली, जटा को पृथ्वी पर पटकते ही पृथ्वी से कृत्या उत्पन्न हुई और कृत्या को आदेश दिया, इस अम्बरीश को मार डालो। जब वह कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए गई, उसी समय क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे और भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता है, उसी समय भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और सबसे पहले सुदर्शन चक्र के द्वारा उस कृत्या को नष्ट किया गया और फिर वह सुदर्शन दुर्वासा को मारने के लिए तैयार हुआ। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि यह सुदर्शन मुझे मार देगा, दुर्वासा ऋषि वहां से भागे, सुदर्शन उनके पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दिशो नव क्षमाम विवरान समुद्रा लोकांश पालाम त्रिदिवम गतः स यतो यतो धावती तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसम ददर्श। जहां जहां अम्बरीश महाराज भाग रहे थे, यत्र यत्र तत्र तत्र सुदर्शनम, वहां वहां सुदर्शन उसका पीछा कर रहा था। दुर्वासा ऋषि कभी उत्तर दिशा में, कभी दक्षिण में, कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी पृथ्वी में, कभी जल में, कभी समुद्र में, बहुत भागे बहुत भागे, परंतु वह सुदर्शन उसका पीछा नहीं छोड़। अंत में भागते भागते दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी को प्रार्थना करने लगे कि कृपया करके आप मुझे इस सुदर्शन से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने वैष्णव का अपराध किया है, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और मैं तो कहता हूं तुम जल्दी यह मेरा ब्रह्मलोक छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो सुदर्शन के तेज से मेरा ब्रह्मलोक जलकर भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने शरण नहीं दी। अंत में दुर्वासा दौड़ते दौड़ते शिवजी के पास कैलाश में आए। हे देवाधिदेव महादेव, आप मेरी रक्षा करो, भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे दौड़ रहा है। भगवान शिव कहते हैं, वयम न तात प्रभवाम भूमि यस्मिन परेण्य प्रजप जीव कोश भवंती कालेन भवंती ही त्रिशा सहस्त्रशो यत्र वयम रमाम। शिवजी ने दुर्वासा को कहा, दुर्वासा जी, इस जगत में आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, और आप जल्दी मेरे इस लोक को छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मेरा लोक जल जाएगा। भगवान शिव ने कहा, यदि सुदर्शन से बचना है तो जिसका यह सुदर्शन है उनके पास जाओ। तब दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते वैकुंठ में भगवान के धाम में पधारे। दुर्वासा जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु ये आपका सुदर्शन मेरा पीछा कर रहा है, आप कृपया करके इसे रोक दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, और भक्त के अपराध करने के कारण यह सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे लगा है। मैं इस सुदर्शन को नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज साधुर वीर ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। मैं मेरे भक्त के अधीन हूं, मैं मेरे भक्तों का दास हूं, नौकर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी, इस जगत में तीनों लोकों में आपको कोई नहीं बचा सकता है, यदि आपको बचना है तो आपने जिसका अपराध किया है उसके पास जाकर क्षमा मांगो, शायद वे आपको बचा दें। दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते फिर से पृथ्वी लोक पर अम्बरीश महाराज के पास आए, और अम्बरीश महाराज के चरणों में दुर्वासा जी दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, मैंने आपका अपराध किया है। तब अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी को कहते हैं, दुर्वासा जी अब क्या कर रहे हैं, आप महान हैं, आप साधु हैं। तब अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि के कहने पर अपनी अंजलि में पानी लेकर कहते हैं, यदि नो भगवान प्रीत एक एव सर्व गुणाश्रय, यदि मैंने जीवन में भगवान की शुद्ध भक्ति की है, मैं मेरी सारी शुद्ध भक्ति, मैं मेरी भक्ति दाव पर लगाता हूं, और मेरी जीवन की भक्ति का फल इस दुर्वासा ऋषि को दे रहा हूं, जिससे वे सुदर्शन चक्र से मुक्त हो जाए। दुर्वासा ऋषि की रक्षा करने के लिए अम्बरीश महाराज ने अपने जीवन की सारी भक्ति उन्हें प्रदान कर दी, और तब जाकर वह सुदर्शन चक्र शांत हुआ। वास्तव में अम्बरीश महाराज ने भगवान को यह नहीं कहा कि प्रभु ये दुर्वासा जी ने मुझे बहुत परेशान किया है, आप इसे मारिए, दुख दीजिए। भक्त लोग जानते हैं दंड देने वाले हम नहीं हैं। यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता भी है तो हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए, दंड देने वाले भगवान हैं। और अम्बरीश महाराज भगवान के इतने महान भक्त थे, कहा जाता है कि यह सुदर्शन चक्र एक साल तक दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे घुमा, और अम्बरीश महाराज एक साल तक बिना खाए बिना पिए एक जगह पर खड़े रहे दुर्वासा जी की राह देखने के लिए। और जिस अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने प्रयास किया था, उस दुर्वासा मुनि को बचाने के लिए अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी भक्ति प्रदान कर दी। वास्तव में इसे भक्त कहा जाता है। और वहां पर दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि आज मुझे पता चला कि भगवान विष्णु के भक्तों की क्या महिमा है। मैं तो यही सोचता था कि भगवान अपने भक्तों के पराधीन क्यों रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ क्यों चलाते हैं। परंतु आज पता चला कि भगवान से भी ज्यादा कृपालु यदि कोई है तो वह है उनके भक्त। आज मुझे वैष्णव की महिमा पता चला। नरसिंह मेहता भी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाए। वैष्णव उसे कहते हैं जो दूसरों की पीड़ा को जानता है, समझता है। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आए। दूसरे दुखी जीव के ऊपर यदि कोई वैष्णव उपकार कर भी देता है तो उसके मन में अभिमान नहीं होता है कि मैंने उसके दुख को दूर किया। सम दृष्टि, वैष्णव की दृष्टि सम होती है, सबके प्रति समान भाव होता है। सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। जैसे भगवान सम है वैसे ही भगवान के भक्त सम होते हैं। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि की रक्षा की और अम्बरीश महाराज की महिमा आज तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वास्तव में इस संसार में जो भगवान की भक्ति करता है उनकी महिमा युग युग बीत जाते हैं परंतु अमर रहती है, उनकी कीर्ति का कभी नाश नहीं होता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति। संसार में जो कीर्ति है, कीर्ति का अर्थ होता है फेमस, नाम हो जाना। सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, धनी बन जाना, क्या ये सबसे बड़ी कीर्ति है? क्योंकि डॉक्टर यदि कोई बन जाए तो कितने साल तक डॉक्टर रहता है, उस डॉक्टर की कीर्ति कितने समय तक रहती है? 50-100 साल। कोई सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाए तो वह क्रिकेटर की कीर्ति कब तक रहती है? परंतु उत्तर देते हुए कहते हैं, कृष्ण भक्त बलिया। यदि कोई गले में तुलसी की कंठी और बाल में तिलक धारण कर लेता है और भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है तो उनकी कीर्ति युग युग तक अमर रह जाती है। आप देखिए ध्रुव महाराज इस संसार में जन्म लिए, कितने साल बीत गए, युग युग बीत गए, लेकिन आज भी उनकी कीर्ति का गान सब लोग करते हैं। प्रहलाद महाराज हो गए, युग युग बीत गए, परंतु आज भी उनकी कीर्ति अमर है। भगवान के भक्त की कीर्ति का कभी नाश नहीं होता, इसलिए भक्ति करना, कृष्ण के भक्त बनना, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अम्बरीश महाराज की कीर्ति तीनों लोक में गाई जाती है। अब सुखदेव गोस्वामी राजा महाराजाओं की वंश परंपरा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी को एक दिन छींक आई और ब्रह्मा जी के छींकने से उसके नाक से एक शिशु का जन्म हुआ और उसका नाम हुआ इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय, पुरंजय के अनेना, अनेना के पृथ, पृथ के विश्वरंधी, विश्वरंध के चंद्र, चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के शाबस्त, शाबस्त के बृहदश्व और बृहदश्व के हुए कुलाश्व। ये कुलाश्व के तीन पुत्र धृतराश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व, और इनके पुत्र हुए हरियश्व। हरियश्व के पुत्र हुए निकुंभ, निकुंभ के पुत्र हुए कुशाश्व, और कुशाश्व के पुत्र हुए सेनजीत, और ये सेनजीत के पुत्र हुए युनाश्व। तो इस प्रकार इसकी परंपरा में सगर का जन्म हुआ। सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। और इस भगीरथ जी का चरित्र बहुत सुंदर है। भगीरथ जी के द्वारा गंगा का अवतरण हुआ। गंगा नदी जो ब्रह्मलोक में थी, कल भगवान वामन देव का अवतार हुआ, भगवान वामन एक कदम से नीचे पृथ्वी के नीचे के लोकों को नापे, दूसरे कदम में पृथ्वी के ऊपर के लोकों को नापे, और ऊपर के लोकों को जब नाप रहे थे तो उनके अंगूठे से इस ब्रह्मांड का कवर टूट गया और विरजा नदी का जल इस ब्रह्मलोक में आ गया। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में धारण किया। राजा सगर के 10,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने गंगा को प्रसन्न किया और गंगा जी को ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर अवतरण कराया। परंतु गंगा जी का संवाद बहुत सुंदर है। जब भगीरथ जी गंगा के पास गए और कहा ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक पर आप आइए, तब गंगा जी ने कहा मेरी दो शर्त है। पहली शर्त यह है कोपी धारिताम वेगम पतंत्या में मही तले। मैं यदि ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर गिरूंगी तो मेरा वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी को तोड़कर मैं रसातल में चली जाऊंगी, इसलिए मेरे वेग को धारण करने के लिए आपको कुछ करना होगा। तब भगीरथ जी शिव जी के पास गए और शिव जी को प्रार्थना की, कृपया करके गंगा जी के वेग को आप कैसे भी करके रोकिए। तब शिव जी ने कहा जाओ गंगा जी को कह दो कि ब्रह्मलोक से मेरी जटा में आए और मेरी जटा से उस वेग को कम करके मैं नीचे गिरा दूंगा। भक्त आचार्य गण लिखते हैं शिव जी गंगा जी को कहीं भी धारण कर सकते थे, परंतु शिव जी भगवान की महिमा को जानते थे। उन्होंने सोचा कि यह जल भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श होकर निकला है, इसलिए परम पवित्र है। इस जल को शिव जी ने जटा में धारण किया। गंगा जी की दूसरी शर्त थी कि मैं जब पृथ्वी में आऊंगी तो लाखों लाखों पापी मेरे में स्नान करेंगे और सभी पाप छोड़कर पवित्र होकर चले जाएंगे। तो ये लाखों लोग पाप करेंगे तो मैं भी, मेरे में यह पाप रह जाएंगे तो मेरा पाप दूर करने वाला कौन होगा। तब भगीरथ जी ने कहा कि हे माते, ये सत्य है कि आप में स्नान करने के लिए लाखों लाख पापी आएंगे, परंतु कभी कभी आप में स्नान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी आएंगे, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त इतने पवित्र होते हैं जैसे ही आप में स्नान करेंगे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। भगवान के भक्त की इतनी महिमा है, वे गंगा के पाप को भी दूर करने वाले। तो इस प्रकार भगीरथ जी के द्वारा गंगा का अवतरण हुआ। भगीरथ जी के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के रुतपर्ण, रुतपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के रोदास, सुदास के अश्मक, अश्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। इस प्रकार सूर्यवंश की परंपरा सुखदेव गोस्वामी गिना रहे हैं और गिनाते गिनाते कहते हैं रघु राजा के पुत्र हुए अज और राजा अज के पुत्र हुए दशरथ। ये दशरथ भगवान के परम भक्त थे। कहते हैं कि ये अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ और उनके पुत्र भगवान श्री रामचंद्र की कथा ये तो बहुत सारे शास्त्र में बताई गई है। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा। भगवान राम का चरित्र शतकोटि, 100 करोड़ रामायण में वर्णन किया गया है। परंतु आज हम भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामचरित मानस के द्वारा यहाँ पर श्रवण करेंगे। राजा दशरथ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में बहुत सुंदर बताते हैं। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के साथ हम लोग इसे गाएंगे, सुनेंगे और इसका आस्वादन करेंगे। राजा दशरथ कौन थे, कहाँ रहते थे और कैसे थे, इसका इंट्रोडक्शन तुलसीदास जी कराते हैं।
अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ
दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ का अर्थ होता है जिसका रथ दसों दिशा में चले, उसे दशरथ कहा जाता है। पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट थे और जिस देश के राजा थे उस देश का नाम अवधपुरी था। अवधपुरी का अर्थ होता है, वध का अर्थ होता है हिंसा। जहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, किसी भी प्रकार का वध न हो, उसे अवधपुरी कहा जाता है। राजा दशरथ के राज्य में किसी भी प्रकार का वध नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं। कहते हैं
अवधपुरी रघुकुल मनि
हैं। राजा दशरथ धर्म का पालन करने में श्रेष्ठ थे। इनके बारे में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार दशरथ के मुख से निकल गया तब वो होकर ही रहना है।
नरम
भक्ति है, भगवान से प्रेम करने वाले।
हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी।
राजा दशरथ भगवान के परम भक्त हैं। कहते हैं
एक बार भूपति मन
राजा दशरथ अपने महल में बैठे थे और बैठे बैठे मन में ग्लानी उत्पन्न हुई, मन में दुख उत्पन्न हुआ। भक्तों, यद्यपि इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट हैं, लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े सबके मालिक हैं, सब कुछ राजा दशरथ के पास है, परंतु एक बात की कमी है। संसार में हम देखते हैं कि लोगों के पास कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है, कुछ ना कुछ घटता है। हम देखते हैं संसार में कई लोग भूखे हैं, उनके पास भूख है परंतु भोजन नहीं है। भूख लगी है, दो दिन से भूखे हैं परंतु भोजन नहीं है। और कुछ लोगों के पास भोजन है परंतु भूख नहीं है, भूख उत्पन्न करने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। राजा है परंतु मन में ग्लानि है, क्या कमी है?
एक बार भूपति मन माही,
एक बार भूपति मन माही,
माये ग्लानि मोरे सोत नाही,
माये ग्लानि मोरे सोत नाही।
हृदय में ग्लानि है, दुख है। क्या दुख है? कि मैंने विवाह किया, इतना समय बीत गया, एक नहीं मेरी तीन तीन पत्नी है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीन तीन पत्नी है। विवाह हुआ, इतना समय बीत गया, लेकिन फिर भी एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। हृदय में दुख है। विवाह हुआ, इतना समय बीता परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा के मन में दुख था, परंतु राजा ने यह दुख अपनी पत्नी को नहीं सुनाया, अपने मंत्री को नहीं सुनाया, अपनी प्रजा को नहीं सुनाया। राजा इस दुख को लेकर अपने गृह गुरु के पास गए।
गुरु गृह गए
गुरु के आश्रम में गए हैं, बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राजा दशरथ भूपति है, भू का अर्थ होता है भूमि पृथ्वी, और पति का अर्थ होता है पालन करने वाले। यद्यपि पूरे पृथ्वी का पालन करने वाले हैं परंतु गुरु के आश्रम में जा रहे हैं। राजा है परंतु चलकर गुरु के आश्रम में जा रहे हैं, बहुत सुंदर शिक्षा। आज इस संसार में किसी व्यक्ति के पास थोड़ा भी धन आ जाता है तो गुरु के पास नहीं जाते हैं, गुरु को फोन करके बुलाते हैं, आप घर पर आइए। परंतु पूरे विश्व के राजा हैं, चलकर गुरु के आश्रम में जा रहे हैं।
गुरु गृह गए तुरंत माही
पहुंचे हैं और गुरु जी का दर्शन करते ही उनके चरणों में गिर गए।
चरण लाग करी विनय विशाला,
चरण लाग करी विनय विशाला,
निज दुख सुख सब गुरु ही
दोनों हाथ जोड़कर गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, आंख में अश्रु है। राजा दशरथ अपनी धीरज खो चुके हैं, और रोते हुए गुरु जी को पूछते हैं, गुरु जी क्या मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है, क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? राजा दशरथ विवल है, धीरज खो चुके हैं, आंखों में अश्रु है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं,
निधार हूं दीन हो यही सुत जारी, निधार हूं दीन हो यही सुत
जारी। राजन धीरज धारण करो, तुम्हें एक नहीं तुम्हें चार चार पुत्र की प्राप्ति होगी।
निधार हूं दीन हो यही सुत जारी,
त्रिभुवन विधि तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैल गई। कहते साधारण पुत्र नहीं, धर्म की स्थापना करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, रघुकुल का ध्वज फहराने वाले, अद्भुत चार चार पुत्र की प्राप्ति। परंतु उस पुत्र की प्राप्ति करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा, पुत्र प्राप्ति करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा, और जब तक श्रृंगी ऋषि नहीं आएंगे तब तक पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं होगा। राजा दशरथ वशिष्ठ जी को कहते हैं, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, तुरंत यज्ञ करवाइए।
श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा,
कामेष्टि यज्ञ कराए। सब लोग बैठे हैं, राजा दशरथ बैठे हैं, कौशल्या बैठी हैं, सुमित्रा बैठी हैं, और कैकेयी बैठी हैं, और ये सब लोग हृदय में भक्ति के साथ आहुति दे रहे हैं।
भक्ति सहित मुनि
श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। बहुत सुंदर शिक्षा जीवन में ग्रहण करने जैसी है। आज जो अपने आप को गुरु मानते हैं उस गुरु के लिए वशिष्ठ जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि जब राजा दशरथ ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, तब कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। कभी कभी शिष्य कुछ प्रश्न पूछते हैं और गुरु उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। कभी कभी शिष्य का उद्धार करने में गुरु समर्थ नहीं होते हैं, तब उस गुरु को चाहिए कि वे अपने शिष्य को किसी दूसरे गुरु के पास भेजे। वशिष्ठ जी में सामर्थ्य नहीं है, तब वे राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि के पास भेज रहे हैं। और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए। प्रकट होकर चरु प्रकट किया राजा दशरथ ने। उस चरु के एक आधे भाग को कौशल्या को प्रदान किया और आधा भाग जो बचा था उनमें से दो भाग करके एक सुमित्रा और कैकेयी को प्रदान किया। तीनों रानियों ने चरु ग्रहण किया है और जैसे ही चरु ग्रहण किया साक्षात भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या के घर में विराजमान हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या के गर्भ में आए हैं उस दिन से पूरे जगत में आनंद फैल गया है। नदियों में कई वर्षों से सूखे हुए पानी नदियां पानी से भर गई हैं। कई समय से सूखे हुए वृक्ष में फूल और फल उगने लगे हैं। चारों ओर सुख ही सुख आनंद ही आनंद बढ़ने लगा है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि साक्षात भगवान जो प्रकट होने वाले हैं। तब 9 महीना बीतते ही वह दिन करीब आ गया जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं। कहते हैं 9वीं तिथि मधुमास लग चुका है। 9वीं तिथि आ चुकी है। शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त आ गया है। गोस्वामी जी इस दिन का वर्णन करते हैं।
9वीं तिथि मधुमास पुनीता
पक्ष मधुमास और 9वीं तिथि आ चुकी है। पवित्र समय और पावन काल अति निकट आ चुका है।
माझ दिवस अति सीधन घामा
का समय है। वैसे तो इस महीने में दोपहर को बहुत धूप होती है परंतु भगवान प्रकट हो रहे हैं यह सुनकर न तो धूप थी न तो बहुत ठंड थी, अनुकूल वातावरण हो गया।
माझ दिवस अति शीतन घामा
Yeah.
जितने भी संत साधु देवता आनंदित हो रहे हैं।
सीतल मंद सुर
चलते ही सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने फोन करके बुला लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान जन्म लेने वाले हैं, सब लोग तैयार हो जाओ, और तैयार होकर भगवान को स्तुति करने के लिए जाना है।
सो अवसर विरंचि जब जाना,
अपने अपने विमान को सजाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर अयोध्या में वहां पर पधारे हैं। गति आकाश में सभी देवता विमान लेकर खड़े हैं। आकाश में विमान ट्रैफिक जाम हो गए।
गगन विमल संकुल सुर जूथा,
आकाश में सभी देवता विमान लेकर खड़े हैं।
गगन विमल संकुल सुर जूथा,
पवित्र नाम गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं?
राजा राम 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 सीता राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम राम राम,
राजा राम 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 सीता
राम राम राम,
राजा राम राम सीता राम राम राम।
को प्रार्थना कर रहे हैं, गर्भस्थ स्तुति कर रहे हैं, देवताओं को पता चला भगवान जन्म लेना चाहते हैं। सभी देवता अपने अपने लोक में वापस चले गए और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र जन्म लिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला,
बैठे रहे सब अपने अपने
कौशल्या हितकारी, भय भगवान श्री रामचंद्र का सारा कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हो चुके हैं। मुनियों के मन को आनंद देने वाले प्रभु प्रकट हो गए।
लोचन अभिरा
श्री रामचंद्र भगवान की जय।